आरवी बार बार दरवाज़ा खटखटाकर थक गई। ना आयांश आया और ना ही उसे वर्तिका की कोई खबर मिली। वो आहें भरती दरवाजे के पास की दीवार से सटकर बैठ गई। देखते देखते 2 घंटे निकल गए, पर वर्तिका को होश नहीं आया। आयांश ने डॉक्टर से बात की और वर्तिका को हॉस्पिटल में एडमिट करने का कहा। डॉक्टर्स बोले, जब तक होश नहीं आ जाता मिस्टर मेहरा, कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है। जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करते हैं वही यहाँ कर रहे हैं हम। बस एक बार होश आ जाए तो कुछ पता चले पेशेंट की हालत का, उसके बाद ही कोई और स्टेप उठाना सही रहेगा।
कितना टाइम लगेगा, कब तक आ जाएगा, दोनों ने एक साथ पूछा।
डॉक्टर्स बोले, अभी कुछ कह नहीं सकते, जल्द आ जाए तो बेहतर रहेगा, अन्यथा। इतना कह जैसे ही डॉक्टर ने तीनों की ओर देखा, विनीत और अभी दोनों रेलिंग के सहारे जा लगे। आयांश चिल्लाते हुए बोला, आप डॉक्टर्स हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए ना, होश में लाइए जल्द, हम समझ सकते हैं आप सबकी हालत मिस्टर मेहरा, सिवाय इंतज़ार के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं अपना, ताकि पेशेंट को जल्द होश आ जाए और आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो। दुआ कीजिए जल्द होश आ जाए पेशेंट को। बस इतना बोलकर डॉक्टर्स अंदर चले गए। तभी आयांश वहां से अपने कमरे में चला आया। उसके आते ही आरवी फट से नीचे से उठी और बोली, मिस्टर मेहरा, वर्तिका को होश आया? आयांश कुछ नहीं बोला, वो अपना कोट उतार शर्ट की बाजू फोल्ड कर रहा था। तभी आरवी फिर बोल पड़ी, बताइए ना मिस्टर मेहरा, हम कुछ पूछ रहे हैं और आप हमें बिठाकर कैसे जा सकते हैं? आयांश आरवी की ओर देखते हुए बोला, जब तक उसे होश नहीं आ जाता तुम यहीं बंद रहोगी, और उसके होश में आने के बाद भी उसके तुम दूर ही रहोगी। इतना कहकर आयांश वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या, अपना सिर पकड़ते हुए, अभी तक होश नहीं आया वर्तिका को, ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? ना मैं बाहर जा सकती हूँ और ना ये जाने देंगे मुझे। कमबख्त ऐसा दरवाज़ा है इस कमरे का जिससे बाहर ना तो मेरी आवाज़ जाती है और ना ही मुझसे खुलता है। बप्पा, कुछ करो, वर्तिका को होश में ला दो जल्दी, ज़्यादा देर की बेहोशी ठीक नहीं है, आपको तो पता है ना, ऐसे में उसके फिर कोमा में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मत होने देना वरना परेशानी बढ़ जाएगी, आरवी दरवाजे की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए बोली। विनीत को परेशान देख अभी उसके पास आया। अभी उसके कंधे पर हाथ रखने को हुआ कि विनीत ने उसका हाथ झटक दिया। ये सब तुम्हारे ही कारण है ना, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको या किसी को भी यहाँ मुझ पर और आरवी पर यकीन तो होगा नहीं, ये बात मैं जान चुका हूँ, पर सच में हम भी हकीकत से अनजान हैं। और आरवी सच कहती है, वर्तिका ही सारे सवालों के जवाब दे सकती है, वही बता सकती है उसकी हालत के कसूरवार हम हैं या नहीं, क्योंकि ये जो हो रहा है हम भी नहीं जानते क्यों हो रहा है। पर ये बात भी सच है विनीत जी, आपके जैसे मैं भी वर्तिका को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मैं और आरवी भी वही चाहते हैं जैसा आप सब चाहते हैं, वर्तिका की हमें भी उतनी ही परवाह है जितनी आपको, प्लीज़ यकीन मानिए। विनीत कुछ नहीं बोला और थोड़ा दूर जाकर अभी की ओर पीट करके खड़ा हो गया। ये देख अभी ने भी फिर कुछ नहीं कहा और वहीं पिलर से सटकर बैठ गया। देखते देखते आधी रात निकल गई। आयांश कमरे में नहीं था, आरवी कमरे से निकलना चाहती थी, पर कैसे निकले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उस कमरे में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कैसे बाहर जाए यही सोच कमरे में इधर उधर चल रही थी। कुछ सोच, आरवी तू यहाँ नहीं रुक सकती है, घंटों बीत गए तुझे इस कमरे में कैद हुए, मिस्टर मेहरा तुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे और ना ही खुद आएंगे कुछ बताने की वर्तिका कैसी है। आए नहीं, मतलब अभी तक होश नहीं आया, और अब तो और भी जरूरी हो गया तेरा यहाँ से निकलना। कहते हुए जैसे ही आरवी ने बालकनी की तरफ देखा तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मिल गया रास्ता, अब यहीं से निकला जा सकता है। इतना कह आरवी बालकनी में आई और नीचे झांक कर देखा। यार ऊंचाई तो बहुत है, उतर पाऊंगी क्या यहाँ से? वैसे इतनी भी ऊंचाई नहीं है, ट्राई करूँ तो आराम से नीचे जा सकती हूँ, बट केयरफुली। गाजियाबाद में माली काका के बगीचे से पेड़ों पर चढ़कर खूब अमरूद आम थोड़े हैं तुमने, बहुत दीवारें भी कूदी हैं बचपन में, और बचपन अभी गया कहाँ है? माना कुछ वक्त से किया नहीं ये चढ़ना कूदना, पर कभी तो किया है ना, तो बस वही ट्रिक फॉलो करते हैं यहाँ से उतरने की, क्योंकि तुझे यहाँ से जाना है और यही रास्ता तुझे घर के अंदर वर्तिका के पास ले जा सकता है। आरवी बोली ही कि उसका ध्यान खुद पर चला गया। ओ शिट, मैंने तो साड़ी पहनी है, साड़ी में उतरना हो पाएगा क्या यहाँ से? कहीं उलझ गई तो? काश जीन्स पहनी होती मैंने, या कोई और ड्रेसेस साड़ी की जगह। मैंने क्यों साड़ी पहनी, और इस अभी के बच्चे को भी मेरे लिए साड़ी ही लेकर आनी थी आज, सूट ले आता तो क्या हो जाता, पर लाता कैसे, मेरा मेजरमेंट जो नहीं पता, हमेशा भूल जाता है, इसे ना सामने बिठाकर याद करवाना पड़ेगा ताकि कभी ना भूले और अगली बार साड़ी ना खरीदे और सूट की फिटिंग मेरे नाप की करवा लाए। क्या बोला था? आरवी तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, सूट वगैरह का समझ ना आया तुझे, और पता है तेरा साइज मुझे पता नहीं है, और ब्लाउज वो मैं तेरे टेलर से बनवा लाया, उसे पता था जिससे कुछ दिन पहले तुमने बनवाया था, सो तुम आज ये साड़ी पहनो। पर यार इस साड़ी से फंसा दिया, अब क्या करूँ, अपना सिर खुजाते हुए, इसी में उतरना पड़ेगा अब तो बेटा। कह आरवी ने साड़ी का पल्लू आगे कर साड़ी में दबाया और साड़ी ऊपर उठाकर थोड़ी आयांश की बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने लगी। बप्पा बस गिरने से बचा लेना, उतर खुद जाऊंगी। इतना कह पैर ऊपर करने को हुई कि तभी आयांश कमरे में चला आया। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला, आरवी रेलिंग पर चढ़ना छोड़ रूम की तरफ मुड़ी, तभी आयांश की नजर उस पर पड़ गई। आयांश को देख आरवी ने थूक निकला और मन ही मन बोली, आ गई बाधा। तभी आयांश आरवी की तरफ आया।
अयांश को अपनी तरफ आता पाकर आरवी अपने बालों को कान के पीछे करते हुए इधर उधर देखने लगी। अयांश उसके पास चला आ रहा था। ये देख आरवी थोड़ा घबराने लगी। अयांश जैसे ही करीब आया वो साइड से निकलने लगी कि अयांश ने रेलिंग पर हाथ रख लिया। ये देख आरवी दूसरी साइड से निकलने लगी कि अयांश ने दूसरी साइड हाथ रख लिया। अब आरवी अयांश के बाहों के घेरे के बीच थी। ये देख आरवी अयांश को घूरने लगी। क्या कर रही थी यहाँ? कुछ नहीं। तभी अयांश ने अपना चेहरा आरवी के करीब किया। जो करने जा रही थी ना, वो करने का अब सोचना भी मत, वरना घर के अंदर जाने की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, वो भी टूटी हड्डियों के साथ। इतना कह अयांश ने आरवी की साड़ी में दबा उसका पल्लू निकाल दिया। ये देख आरवी की आंखें फैल गईं। तभी अयांश उसे छोड़ रूम में वापस चला गया और सोफे पर बैठकर सामने लैपटॉप खोल उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। कितने शातिर हैं ये, फिर नीचे देखते हुए। अब सोचें भी तो भी नहीं उतर सकते यहां से, वरना ना भी गिरेंगे तो भी ये गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। क्या? आरवी भी कमरे में चली आई और अयांश के सामने खड़ी होकर बोली, वर्तिका कैसी है? अयांश ने कोई जवाब ना दिया तो आरवी समझ गई कि उसे अभी तक होश नहीं आया है। तभी फिर अयांश से बोली, आपको कैसे पता चला हम वहां से उतरने जा रहे थे बिना उसकी तरफ देखे? मेरे रूम का एक ही दरवाजा है और जो तुमसे खुले ये पॉसिबल नहीं। और बालकनी में खड़ी ना तो तुम वहां चांद देख रही थी और ना ही वहां तुम तारे गिन रही थी, तो बस ऐसी ही खुराफात सूझी होगी तुमको जिससे तुम यहां से निकल सको।
ये सुन आरवी ने अयांश को घूरा और फिर बोली, खोल दीजिए ना मिस्टर मेहरा। पर अयांश को खामोश पाकर आरवी उसे मन ही मन अक्कड़ चंद बुलाती है और रूम में इधर उधर चलने लगी। देखो तो कैसे अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पल भर का चैन नहीं, एक जगह बैठा नहीं जा रहा, और इनको काम की पड़ी है कि अंगुलियां और नजरें लैपटॉप से हट नहीं रहीं। अब आरवी को क्या पता, अयांश का ये तरीका था खुद को उलझाए रखने का ताकि जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में वो कमजोर ना पड़े। क्या होगा अब, कैसे होगा, ये सोचकर जैसा कि सब कर रहे थे सबके जैसे वो परेशान नहीं हो सकता है। ये सोच ऐसे वक्त में अयांश खुद का ध्यान लैपटॉप पर अपना काम करने में लगा लेता है। क्रमशः